किसी को अच्छा शरीर मिला है तो उसने पूर्व जीवन में क्या किया होगा अच्छा शरीर नहीं मिला है तो हमने पहले ऐसा क्या दुष्कर्म किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप हमें यह स्थिति प्राप्त हुई। अगर हमें वाणी अच्छी मिली है तो हमने ऐसा क्या भला किया होगा जिससे कि वाणी सुस्वर मान करना कैसे मिला होगा, और अगर वाणी कर्कश है कठोर है तो मानिए होगा कि हमने ऐसा कौन सा दुस्वर मान करना अपने साथ बांध लिया होगा। ये सारी चीजें हमारे कर्म निर्धारित करते हैं, इसके लिए एक बड़ी प्रकृति वाला कर्म है। सारे कर्मों में जिसकी फैमिली सबसे बड़ी है वो नाम कर्म है। 93 इसके भेद प्रभेद है जिससे कि पूरी बॉडी कंस्ट्रक्ट होती है, और वाणी मिलती है मन की सामर्थ्य मिलती है। द्रव्य मन भाव मन तो हमारे अपने क्षयोपशम से, ज्ञान के क्षयोपशम से, मन इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से, वीरांतराय के क्षयोपशम से मिलता है, लेकिन जिसके आलंबन लेकर के हम विचार करेंगे वो मन भी हमारे भीतर इसी तरह कंस्ट्रक्ट होता है। हम स्वयं अपना शरीर निर्मित करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, रियल ह्यूमन कैसा भी हो, अगर हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो हम बहुत अच्छा अच्छी चीज कंस्ट्रक्ट कर लेंगे उसमें से। हाँ, वो आर्ट कैसे आएगी, हमारे अपने कर्मों से आएगी। जैसे कि हम किसी अच्छे कारीगर को बुलाते हैं और सामान बता देते हैं कि एक टाइप का सामान है और उसमें इस तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, बहुत अच्छा अगर कलाकार हो, बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर हो तो बहुत अच्छी बिल्डिंग बना करके रख देगा, उसमें रंग रोगन भी बहुत अच्छे से कर देगा। भले आपने उसको मटीरियल अच्छा नहीं दिया, और जिसको उसका आर्ट नहीं मालूम उसको बहुत अच्छा मटीरियल भी देगा तो वेस्ट कर देगा वो सब। ठीक ऐसे ही हमारे अपने जीवन में भी है, हमारे अपने कर्म जैसे होंगे वैसी सारी सिचुएशंस हमारे चारों तरफ क्रिएट होंगी, और फिर इतने में जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है उनमें हमारे अपने क्या बिहेवियर है इस पर भी डिपेंड करेगा। हमें जैसा जो कुछ भी मिलता है उसमें हम सुख और दुख अनुभव कैसे करते हैं ये हमारे अपने एटीट्यूड पर निर्भर करता है। जो हम पहले कई बार उस चीज को समझ चुके हैं, चीजों से हमें सुख नहीं मिलता, वे चीजें और उनसे हमारे क्या संबंध है, इससे हमारा सुख और दुख रिलेटेड है। हमें अच्छे शरीर मिले हैं जरूरी नहीं है कि सुख मिलेगी, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ये चीज भी इसके साथ जोड़ करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें सब कुछ अपने पूर्व संचित कर्मों से मिल जाने के बाद भी उसमें हर्ष करना है, अभिशाप करना है, आगे के लिए क्या तैयारी करना है, ये सब हमारे अपने वर्तमान के पुरुषार्थ पर निर्भर है। ये ठीक है कि आज हमें जिस तरह का शरीर मिला उसकी जिम्मेवारी हमारे पुराने कर्मों की है, लेकिन उस शरीर का और उस वाणी का और उस मन का हमें करना क्या है, ये आज वर्तमान में हमारे ऊपर निर्भर है। अब जरा विचार करें कि जैसा शरीर मिला है उसके लिए कौन से कर्म जिम्मेदार होंगे, कौन से भाव हमारे जिम्मेदार होंगे, ताकि हम आगे के लिए अपनी जरा जो तैयारी कर रखी है उसमें परिवर्तन कर सकें। क्योंकि अगर मालूम कर दें कि इस तरह की तैयारी करने से और हम जो सोच रहे थे वो चीज नहीं मिलेगी, मालूम कर दें कि हमने तो तैयारी दूसरे क्वेश्चंस की कर रखी थी आंसर्स की, और लगता है कि शायद कोई और चीज सामने आने वाली है, तो हम जल्दी से अपनी तैयारी बदल सकते हैं। हमारे अपने परिणामों को हम टटोल सकते हैं कि वे किस दिशा में जा रहे हैं और आगे जाकर के हमें कैसी स्थिति और कैसा अनुमान नहीं मिलेगा। सब चिंतित होते हैं इस चीज के लिए कि कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो कैसी कैसी स्थिति मिलेगी, कौन कौन मिलेंगे, कैसा शरीर मिलेगा, शरीर मतलब कैसा मकान मिलेगा रहने का, ये तो है, ये शरीर भी तो मकान है, कैसे रहना मिलेगा और कौन सी जगह मिलेगी, गति क्या है उस जगह का नाम तो है जहां हम पहुंच जाते हैं, और कौन सी जाति मिलेगी, एक इंद्री आगे की, दो इंद्री आगे की, तीन इंद्री की, चार इंद्री, पंच इंद्री, कौन सी तैयारी है जिससे कि हम उस प्रकार के शरीर को पाएंगे, एक इंद्री का शरीर मिलेगा कि दो इंद्री का मिलेगा कि पंच इंद्री का, और पंच इंद्री भी नाकी जीव का शरीर मिलने वाला है कि देव का शरीर मिलने वाला है कि किसी मनुष्य का शरीर मिलने वाला है या कि हाथी घोड़े का शरीर फॉर्म करेंगे, ही लेते हैं जब नाम कर्म की प्रकृतियां करते हैं कि अगर इसमें जितने बाल हैं तो उतने ही हैं क्यों है और उनकी स्टाइल क्या है, ये सब हमने डिसाइड किया है। शेप साइज सारा कुछ आंख यहीं लगनी है तो यहीं लगेगी और साइज कितनी है, प्रपोर्शनेट है कि अनप्रपोर्शनेट है, बॉडी में जो भी चीजें फॉर्म हुई हैं वो प्रपोर्शनेट हुई है कि नहीं है, शरीर में कैसा सहमन है, कैसे हमारे जॉइंट्स हैं, उनमें कितनी ताकत है, ये सब भी हम अपने कर्मों से डिसाइड करते हैं। इन सब के लिए अलग अलग कर्म है और इन सब के अलग अलग परिणाम हैं। मजा ये है, इतना बारीक हिसाब कोई अगर बता सकता है तो सिर्फ सर्वज्ञ बता सकते हैं। ये कर्म प्रकृतियां और इनके होने वाले परिणामों को जब हम जानते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारी बुद्धि के बहुत पार है, ये तो कोई बहुत अत्यंत ज्ञानवान ही ये जान सकता है। दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते कभी भी, ट्विंस भी क्यों ना हो, उनके बॉडी कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं चेंजेस जरूर से होंगे। क्यों? क्योंकि दो सापेक्ष जीव हैं, अलग अलग जीव हैं तो अलग अलग ही उनके अपने शरीर की बनावट और बनावट दोनों चीजें होंगी। हाँ, जैसे कपड़े की बनावट और बुनावट दोनों ही, ताना वाना किस तरह का है ये बुनावट कहलाती, इसी तरह शरीर में भी किस तरह से हमने ताना वाना बनाया है और कैसा उसका शेप है और साइज क्या है, ये सब हम निर्धारित अपने भावों से करते हैं। योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामना तद विपरीतम शुभस्य। दो सूत्रों में आचार्य भगवंतों ने शॉर्ट में सारी चीज कह दी। अगर शरीर के मामले में, गति के मामले में, जाति के मामले में, सौभाग्य दुर्भाग्य यश और अपयश के मामले में अगर सारी चीजें आपको खोटी मिली हैं तो मानी होगा आपने पहले मिली हुई मन वाणी और शरीर का दुरुपयोग किया होगा, ये तय है। बस इतने शॉर्ट में कह दिया, अपन डिटेल कर लेंगे उसका समझने के लिए, पर इतनी ही बात है। यो वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामना, अगर हमारा शरीर अशुभ मिला है और भी सारी चीजें अशुभ मिली हैं तो मानिएगा कि हमने योग यानी मन वचन काय, इन मन वचन काय की सरलता नहीं रखी होगी, इन मन वचन काय का सदुपयोग नहीं किया होगा, इनका दुरुपयोग किया होगा या कि इनके द्वारा कुटिलता की होगी, मन में कुछ वाणी में कुछ शरीर से एक्शन कुछ और, कोई भी चीज हमने दूसरे के प्रति शुभ नहीं करी होगी, मन में खोटा सोचा होगा, वाणी खोटी बोली होगी और शरीर से भी हमने दूसरे का उपकार करने की जगह पर अपकार किया होगा, जिससे कि हमें आज मन वाणी और शरीर की सामर्थ्य सब अशुभ मिली हुई है। हम किसी का कुछ भला कर ही नहीं पाते, हमसे न वाणी से दूसरे का भला होता, ना शरीर से दूसरे का भला होता, न हमारे मन में कभी दूसरे का भला करने का विचार आता है, सब खोटा ही खोटा आता है। इसके मायने है कि पहले हमने इस तरह का कर्म किया होगा और निरंतर किया होगा, और तब विपरीतम शुभस्य, उससे विपरीत अगर कोई है तो सारी चीजें शुभ मिली होंगी। अगर हम देखें गौर से, अगर हमें अच्छा सुंदर शरीर मिला है तो इसका मतलब है कि हमने दूसरे के लिए जरूर अपने शरीर से मदद की होगी। हाथ सुंदर मिले हैं, इसके मायने है कि मैंने दूसरे का उपकार किया होगा। आंखें सुंदर मिली हैं, मैंने दूसरे की बुराई में देख करके भलाई देखी हुई होगी इन आंखों से, इसलिए आंख आज मेरी आंखें सुंदर हैं, मेरी आंखों में चमक है। ऐसा है इसका रिलेशन, ऐसा जो भी है इसका। और अगर ये सारी चीजें मैंने खोटी की होंगी, आंखों से सिर्फ दूसरे की बुराई देखी सुन देखी होगी और कानों से दूसरे की बुराई सुनी होगी, तो हमें वह कान वैसे ही मिलेंगे। स्वदोषे विनमी नमः, बड़े बड़े कान मिलते हैं आपकी को ऐसे सूपे जैसे और आंख टिट्टी सी मिलती, क्यों? अपने दोष देखने में तो इतनी सी आंख और दूसरे के दोष देखने में इतनी बड़ी आंख, और वैसे ही शरीर मिलेगा, वैसे ही शरीर मिले। पहले हम जिस तरह के परिणाम और हैं, जिस तरह का उपयोग इन मन वाणी और शरीर का करते हैं वैसा वो मन वाणी और शरीर हम यहां पुनः पाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बचपन में जो शरीर मिलता है वो सबको क्या अच्छा लगता है, कभी सोचा? बड़े होने पर वही शरीर अच्छा नहीं मालूम करने लगता कई बार, तो ऐसा हो सकता है कि शीर्यंते इति शरीराणि, शरीर तो ऐसा है कि जीव मशीन होता है, उसका स्वभाव है। हाँ, एक बात तो यह है और दूसरी बात और है, बचपन में चूंकि भोलापन है, चूंकि सरलता है मन वाणी और शरीर की, तब शरीर प्रूप भी क्यों ना हो भला मालूम पड़ता है, और कई बार शरीर बहुत सुंदर हो और अगर कुटिलता हो सरलता ना हो तब भी शरीर सुंदर नहीं मालूम पड़ता। हालांकि ये कर्म तद्गत विकार की, ये नाम कर्म की अधिकांश प्रकृतियां शुभ और अशुभ दोनों रूप है, लेकिन इससे जीव का भी संबंध है। इसलिए मैंने दोनों बातें आपसे कह दी कि शरीर अत्यंत सुंदर होने के बावजूद भी यदि दुर्भर नाम कर्म का उदय है तो वो शरीर किसी को पसंद नहीं आएगा, और शरीर अशुभ नाम कर्म के उदय से और पूर्व मिला हुआ है लेकिन सुबह नाम कर्म का उदय है तो सबके लिए बना जान पड़ेगा। इसलिए ये दोनों चीजें ध्यान में रख करके हमारा अपना वर्तमान का भावदेश भी इसमें है, अच्छी और बुरे बनाने में गुलाब का फूल सबको अच्छा मालूम पड़ता है, देखिएगा उसका अपना नाम कर्म देखिएगा, ठीक है, उसके अकेले नाम कर्म नहीं है, उसके सुबह नाम कर्म भी है साथ में, उसके अवयव तो अच्छे हैं, उसका कलर अच्छा है, उसके साथ साथ उसकी सुगंध अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, कांटों के बीच खिला होने के बावजूद भी सुबह नाम कर्म में हर आदमी पाने के लिए उत्सुक हो जाता है। ऐसे ही ये कैसे बना होगा, कैसे उस वनस्पतियों कितने प्रकार की हैं उनके भी नाम कर्म हैं, कितने कितने प्रकार के लोग हैं उनके अपने अपने नाम कर्म हैं, और कैसे ये सब बनते होंगे, बचपन में क्या ये सब अच्छे लगते हैं, छोटे होने पर क्या अच्छे लगते हैं, और बचपन में रास्ते से चले जाने पर क्यों हमें कोई गाय का बछड़ा दिख जाता है तो उसकी पीठ थपथपाने का मन होता है, कोई अच्छी चीज दिख जाती तो खड़े होकर के देखने का मन होता है, क्यों होता है ये सब? क्योंकि उस समय चित्त अत्यंत निर्मल होता है, और वो जो चित्त की निर्मलता है वो इन सब चीजों के प्रति हमारे मन को आकृष्ट करती है, और इतने ही बड़े होने पर भी कुछ लोग जब समय से भोजन करने आते हैं ये सोच करके कि मेरी वजह से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, तब देखिए ना उनके अपने जीवन की सुंदरता, उनके व्यक्तित्व की सुंदरता, इससे ये मालूम पड़ता है। तीन चार बातें हम इसमें से निकाल लें तो शायद हमें आसानी हो जाए आगे बढ़ने में। पहली चीज कि जो मन वाणी और शरीर हमें मिले हैं उनकी जिम्मेदारी हमारे अपने पुराने कर्मों की है, क्या है? हमने उनका सदुपयोग किया होगा इसलिए अच्छा मिला है, हमने इन मन वाणी और शरीर से अपना स्वार्थ नहीं साधा होगा, परमार्थ साधा होगा, इसलिए ये शुभ मिले हैं, अगर अपना स्वार्थ साधेंगे तो आगे जाकर के ये सब अशुभ मिलने वाले हैं, और इतने में हमने इस सारी सामग्री को उतने महत्व नहीं दिया होगा, शरीर मन और वाणी को उतने महत्व नहीं दिया होगा, बल्कि शरीर मन और वाणी जिस आत्मा को मिली है उसको ज्यादा ध्यान दिया होगा, हमने शरीर मन और वाणी जो मिला है और भी जो सामग्री मिली है उसको उतना, उसके संचय का उतना ध्यान नहीं रखा होगा, बल्कि अपने सद्गुणों के संचय का ज्यादा ध्यान रखा होगा, इसलिए अच्छा शरीर मिला है, और इसके विपरीत अगर होगा तो बुरा शरीर मिला। निकालिए हमने इतनी बातें इसमें से, हमारे लिए पहले जो मन वाणी शरीर मिला था उसका हमने सदुपयोग किया होगा, सदुपयोग करना मतलब दूसरे के काम आना, दूसरे का ख्याल रखना, वही उदाहरण, मैं समय से भोजन के लिए पहुंच जाता हूं, मुझे दूसरे का ध्यान है, मेरे वजह से उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह है मैंने उदाहरण का सदुपयोग, मुझे उदाहरण मिली है, मैं बोलूं ऐसा जिससे मुझे बाद में क्षोभ उत्पन्न न हो, मैं काम करूं ऐसा जिससे बाद में मुझे पश्चाताप न हो, और मैं विचार करूं ऐसा जिससे बाद में मेरे मन में ध्यान न हो। चलिए, हो गई तीनों चीजों का सदुपयोग। हम आसानी से इस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं, बस जरा सा विचार करना पड़ेगा कि वाणी मैंने बोली है तो बाद में फिर मुझे अपने ही बोले पर कहीं मन में क्षोभ न हो कि ऐसा क्या बोला, सामने वाले को तो क्षोभ में से हुआ, पर मुझे बाद में अपने बोले हुए का क्षोभ न हो तो समझ में कि ठीक सदुपयोग किया है वाणी का, और करने के बाद पश्चाताप न हो, शरीर की क्रिया करने के बाद पश्चाताप न हो तो मानिएगा कि शरीर का सदुपयोग किया है, और मन में किसी के बारे में विचार करने के बाद ध्यान न हो कि मैंने ऐसा क्यों विचार किया। हम मन वाणी और शरीर का सदुपयोग इन बातों का ध्यान में रख करके आसानी से करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर हम आज वर्तमान में अच्छा शरीर नहीं मिला है तब भी आगे के लिए अच्छे शरीर की तैयारी कर सकते हैं, वर्तमान में अच्छी गति नहीं मिली है तब हम आगे के लिए अच्छी गति की तैयारी कर सकते हैं, और आगे अच्छी मिली है तो आगे के लिए बुरी की तैयारी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज मनुष्य गति मिल गई है, सबसे सौभाग्यशाली है चार गतियों में से, हमने कल पहले ऐसे मन वाणी और शरीर की वक्रता नहीं होगी, सरलता नहीं होगी मन वाणी शरीर की, जिससे कि हमें आज मनुष्य गति मिली है। मनुष्य आयु मिलना अलग बात है देखो, और मनुष्य गति मिलना अलग बात है, ये चारों गतियां निरंतर 24 घंटे बनती रहती हैं, ध्यान रखना, और आयु तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आने पर ही बनती है, पर गति तो हम हमेशा रहते रहते, हमारे अपने मन वाणी और शरीर का जैसे शुभ और अशुभ परिणाम होगा वैसी गति, वैसी एक इंद्री दो इंद्री इत्यादि जाती, और फिर उसके हिसाब से बहुत सारे गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात सहनम स्पर्श रस गंध वर्ण अनुरु ऐसे भी शरीर, बारह सुंदर का अपना शरीर अपने ही भाग में कारण बनता, चमड़ी गाय की अपनी सुंदर सी पूछ एक बार गाड़ी में डब गए तो कई दिन खड़ी रहेगी जब तक कि सुलझ ना जाए, मर जाएगी वहां पर प्राण दे देगी, लेकिन हटे भी नहीं क्योंकि अपनी पूछ से बहुत प्यार होते उसको, एक बार अटक गया पूछ में जाड़ी में वहीं खड़ी रहेगी, टूट जाएगा उसको बहुत दुख होता, टूटना नहीं चाहिए। अपने घात करने वाला शरीर हमें मिल जाता कई बार, और ऐसा शरीर जैसे कि सिंह का दूसरे के घात करने के जैसे नख, यह सब कैसे होता होगा, हमारे अपने मन वाणी और शरीर की क्रियाओं से होता है, वो शुभ होती है तो सारी चीजें शुभ बन जाती हैं, वे अशुभ होती हैं तो सारी चीजें हमारे जिन में अशुभ आती हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अशुभ बन जाने के बाद भी हम उनको कैसे शुभ बनाए, अभी तो वर्तमान में सारी चीजें अच्छी मिल जाने पर हम तैयारी बुरे की कर रहे हैं, अगर गौर से देखा जाए अपने मन वाणी और शरीर को बिगाड़ करके जो है, और आगे के लिए इन सब की जो सामर्थ्य है उसको बुरा बनाने की कोशिश में है, अगर इस चीज का हम विचार करें, जो शक्ति मिली हुई है उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो सहनहीन बनेगा, अभी भी हीन सहमन मिला हुआ वज्र दशम स्नान सहमन यहां किसी को नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, हम सब ने इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया होगा, शरीर का सदुपयोग है कि इस शरीर से तपस्या करना या कि दूसरे की सेवा करना, और उसमें विशेष रूप से गुरुजनों की सेवा करना, इस शरीर का सदुपयोग अगर करना है, हमने जब भी आचार्य महाराज इस बात को सुनाते हैं कि हनुमान जी को वज्र का शरीर कैसे मिला, भीम को वज्र का शरीर कैसे मिला, पूरे जीवन में उन्होंने अपने शरीर के द्वारा मुनि जनों की भारी सेवा करी, आचार्य शांति सागर महाराज को ऐसे वनिष्ठ शरीर मिला था कि दो दो मुनि महाराज को एक कंधे पर दोनों कंधे पर बिठा के वेद गंगा और दूध गंगा के संगम को पार करते, हमने अगर सदुपयोग किया है तो आगे फिर ये शरीर मजबूत मिलेगा। इस वाणी का अगर दूसरे के कल्याण की बात कहने में उपयोग किया होगा तो ही फिर से ये वाणी सुस्वर मिलेगा, अन्यथा फिर दुस्वर मिलेगा। जैसे कि गधे की वाणी और कौए का स्वर कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन कोयल की वाणी सबको पसंद है। क्या किया होगा कोयल ने वैसी वाणी पाने के लिए? सबसे मधुर बोला होगा, इसलिए वाणी मधुर है। बहुत ज्यादा मैंने डिस्कशन करने की चीजें नहीं है, बहुत अनुभव करने की चीजें हैं। मैं तो सोचता हूं अपने जीवन में थोड़ा सा गौर से एक दृष्टि बात करें सामने तो सब समझ में आता है कि हाँ वाकई में ये सब चीजें ऐसी बनी होंगी और आचार्यों ने वही चीज हमें इशारा किया है, लिखा है। और भी कई कारण हैं, उन पर अपन विचार कर लेते हैं। जब हम अपनी इस वाणी से दूसरे की चुगली करने का काम करते हैं तो पिशुता जिसको कहते हैं चुगल थोड़ी, इसकी बात उसको ट्रांसफर करना और वो भी अपनी तरफ से कुछ मिक्सअप करके झूठ मूठ वाणी का मिले और उसका उपयोग कैसे करना है यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। पिशुता इसके लिए रखना है बैल और शेर में बन्य दोस्ती थी, ये बच्चों की कहानी है, बच्चों को इसमें लिखी है। दोनों में अच्छी दोस्ती थी पर किसी को सुहाती नहीं थी, और किसी की भी दोस्ती किसी को सुहाती है आज बताओ? इससे मालूम करते हैं कि हमारा अपना मन कितना कितना विकृत है। किसी का अच्छा कुछ हो रहा है तो हमारे मन में कैसे जैसे आग लग गई, ऐसा क्या हो जाता है? कैसे मन पाया हमने, छोटे मन को पाया? किसी के बारे में भला तो थोड़ी देर सोचेगा, बुरा बुरा सोचता है। यानी थोड़ी देर तो किसी से प्यार से बोलेंगे जिनसे मेरा स्वार्थ है, और बाकी किसी इस वाणी से चाहे जो बोलते हैं। थोड़ी देर इस शरीर से अपना सार सकता है तो उस शरीर से अच्छा काम करेंगे, बाकी सारे काम ऐसे करेंगे जिससे कि दूसरे का अपकार ही। ये क्या चीज है? अगर नहीं सुहाई नरेंद्री महारानी को तो बिल्कुल नहीं सुहाई। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, कहां शेर और कहां बैल, इन दोनों की क्या दोस्ती? अरे ब्राह्मी वालों से दोस्ती करो। तो जाकर के और बैल से कहा कि सुनो मालूम है शेर राजा आज आपसे बहुत नाराज है। अरे नाराज क्यों है, दुर्गा भी तुम्हें मना लूंगा, हमारी तो दोस्ती है। बोले नहीं नहीं आज तो तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे थे, बोलने का दोस्ती में संदेह नहीं है, कभी नहीं सकते, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है। ठीक है मत करो हमारी बात का विश्वास, पर आप जाकर के देख लेना सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही दूर से देखोगे ना तो दूर पे दिखाई पड़े शेर तो समझ लेना कि तुम्हारी बात सच्ची है, नहीं तो नहीं तो झूठ है। मैं इस तरह से बैल को जाकर के सलाह देगा, ऐसी छोटी सलाह देने में अपन बहुत होशियार है। दूसरे के बीच में बैर पैदा करने की आदत अंततः हमें अशुभ नाम कर्म में ले जाएगी, और दूसरे का मेल मिलाप करने की आदत हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगी। आज तक हमने दूसरे को एक दूसरे के प्रति विरोध करने और एक दूसरे से द्वेष उत्पन्न करने का तो काम किया है, लेकिन पानी मात्र से प्रीति उत्पन्न हो यह काम नहीं किया। ये परमार्थ का काम है, दूसरा स्वार्थ का काम है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है जीवन में जब इन चीजों को विचार करते हैं पढ़ते हैं। तो आप शेर के पास पहुंच गए लोमड़ी महारानी, वो बैल, अरे क्या तो आपने उससे दोस्ती करी है, कहीं आपकी बरामदी तो है क्या? वो शेर ने कहा कि आज क्या बात है, तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, वो मेरा इतना अच्छा मित्र है। अरे होगा तुम्हारा मित्र, कितनी तो बुराई करता है तुम्हारी और फिर भी उसको अपना मित्र बना रखा। लो शुरू हो गया काम, शुरू हो गया। अच्छा क्या कह रहा था? अरे क्या कह रहा था कि मैं तो बस शेर अपने को क्या जंगल का राजा मानते हैं, मेरे जरा दो दो बात के बजाय तो बता लग गया कि कौन बलशाली है। अच्छा ऐसा कह रहा था हाँ, और अगर आपको विश्वास नहीं है आज मिल लेगा दूर से ही आप उसको जरा गौर से देखना, हाँ पांच मिनट देखना जरा गौर से दूर से देखना, वो ऐसे सीन करो देखेगा तो समझ जाना कि मेरी बात सच्ची है नहीं तो झूठी मान लेना। बस दोनों ने उनको बता दिया, एक से कह दिया कि जरा गौर से देखना और दूसरे से कह दिया कि मैं घूर के देखेगा तो समझ जाना, और उनसे कह दिया कि सीन इसमें लिखा हुआ है कि बच्चों इसका मॉरल क्या है, ऐसे दूसरे की बातों में आकर के कभी लड़ना नहीं चाहिए, लड़ने से दोनों की हानि हुई, मित्रता तो खत्म हुई, जीवन भी खत्म हो गया। ठीक ये तो समझ में आती बच्चों की कहानी, अपने जीवन में नहीं आती समझ में, ऐसे दूसरों से लड़ने से दूसरों की बुराई करने से बच्चों अपनी ही हानि होती है। बच्चों को समझाते हैं लेकिन ये जो बड़े बच्चे हैं इनके समझ में नहीं आते, अपने जीवन समझ में आ रहा है कि ये वाणी और मन इसके लिए बनाए हैं दाल पेच करने के लिए प्रतिबद्धता है मन वाणी और शरीर की, अरे इस प्रतिबद्धता से तो मेरे को कल मन और वाणी और शरीर जो भी मिलेंगे सब अशुभ ही मिलने वाले हैं, मैं दूसरे का अशुभ नहीं कर रहा हूं मैं तो अपने हाथ से अपना अशुभ कर रहा हूं, मुझे इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती। कह रहे हैं कि अस्थिर चित्त हमेशा चित्त बदलता रहता है, ऐसे रहते हैं कई लोग जिनके मन के तो बड़े मूडी मूडी है, वो यही अस्थिर चित्त है जरा देर में मैंने क्षणे पुष्टम क्षणे रुष्टम क्षण भर में रुष्ट है क्षण भर में संतुष्ट है ऐसा मन लेकर के बनाए, ऐसे अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति और फिर जाकर के और अशुभ नाम कर्म का ही बंधन करते हैं और झूठे नाप तेल ये भी अशुभ नाम कर्म के बंध में कारण है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज की सभा में कोई तेरह मेरे बैठा हो तो एक ही सूत्र बोलते हो ये वक्रत है अनुसंधान मुंच सुबह सनावन है बोलते कि ठीक बैठो तेरह मेरे बैठेंगे तो योगों की वक्रता मन वचन काय की वक्रता अगर होगी तो आगे जाकर के अशुभ मिलने वाले हैं सम्मान कर वो यहां पर है। रत्न इत्यादि का निर्माण करना मिलावट करना इससे अशुभ नाम कर्म, झूठी गवाही देना इससे अशुभ नाम कर्म, दूसरों के अंग पांग का छेदन भेदन कर देना अशुभ नाम कर्म, अशुद्ध कठोर वचन बोलना ये भी अशुभ नाम कर्म का बंद हो रहा है। अपने लिए अपना घाटा अपने हाथ से बच्चे को टान पकड़ करके और डांट देते हैं ठीक है डांटो हम तो सुधारने के लिए डांट रहे थे ठीक है वो सुधर जाएगा आप तो गए आपका तो निकल गया कौन कठोर वचन आपने बोल करके और उसको बच्चे को समझा भी दिया आप प्यार से भी समझा सकते थे, प्यार की भाषा से बड़ी कोई भाषा नहीं होती, लेकिन हमें लगता है कि जब हम अपने लोगों के साथ कठोरता से पेश आएंगे तभी तुम्हारा दबदबा होगा तभी तो वो हमारे बहुत पैरा जब तक नहीं बच्चे मानते नहीं बात पैर से मानते नहीं हम कितना समझाते हैं उनको लेकिन वो माने ना माने वो अपना कल्याण करें ना करें हम अपना कल्याण अपने हाथ से कर देते हैं। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि अशुभ जो कि सब लोगों के बीच कहे जाने योग्य वचन नहीं है जो कठोर है मर्मभेदी है उन वचनों से अशुभ नाम कर्म का ही बंध होता है और मंदिर के गंध माल दीप धूप इत्यादि हड़प लेना इससे भी अशुभ नाम कर्म का बताइएगा। देवधन और देवगंध दो प्रकार की होती वो जो गुल्लक में डालते हैं घसीट कटवाते हैं वो सब देवधन है और वो जो चावल और चिपक गोदा बदाम ये चढ़ाते हैं ये रख देते हैं मंदिर में वो सब देवधन है और दानों का भक्षण करना ये दोनों चीजें अशुभ नाम कर्म के लिए कारण बने। बात लोग करते हैं, बोली बोल देने के बाद अब रखेंगे पैसे अपने पास, सोना नहीं दे रहे, जितने दिन तक रखेंगे उतने दिन तक अशुभ नाम कर्म का बंद हो रहा। ये अपने मन से नहीं करूं, बुरा मानने की बात नहीं है, ऐसे है, अब है तो क्या करें, बोल दिया कि मैं ऐसे ऐसे करूं और मन कच्चा हो रहा, पीछे हट रहा है, न करना पड़े कंटिन्यू काम हो जाए। हां ऐसे ही रहता है, सबसे अच्छा लिखा है कि अगर पॉकेट में है तो बोलो दो परमिशन थो के वापस लौटो, पहले भी कैसे रखे कल के दिन शाम को क्या पता मन कैसे हो जाए, देखो तुरंत नहीं तो वो दो धन जब से आपने बोल दिया तब से वो दो धन हो गया, आपने कह दिया कि इतने रुपये मेरा बोली में बोल दिया और घर तक चले गए हैं, जितनी देर बोती जाएगी उतनी देर आप उस दो धन को जो बोला हुआ है 10,000 बोल दी तो वो दो धन आपके पास रखे हैं, और उसको जितने दिन तक रखे रहोगे उतने दिन तक परिणाम अगर नहीं देने के बन गए दे दूंगा, क्या फर्क पड़ता, कौन खाए जा रहा हूं, दे तो दूंगा, आवाज थोड़ी दे दूंगा, दे दूंगा तो मुझे जरा काम हो, एक दूसरे अपने सुख सुविधा के साधने में तो लगाए हैं इस दो दिन को, और दे भी गए हैं, चार दिन बाद देंगे, ये सो अशुभ नाम करने के बाद कभी रैन सार पढ़िएगा कुंभकुंभ स्वामी का, इसमें इसके बारे में बहुत डिटेल लिखा हुआ है। एक ही फैमिली हमने अभी तक देखी अपने जीवन में, और भी होंगी लेकिन मैं मेरा ऑब्जर्वेशन जितना उतना बता रहा हूं, आप जल्दी से आपको लगे कि सिर्फ एक की बढ़ाई कर रहे हैं, जो बढ़ाई करने लायक है वो थे, उनके ऐसा अपने जीवन में भी होना चाहिए। एक फैमिली मिली, उनके नियम है कि आपने जितने पैसे सभा में बोले हैं या तो वहां लेकर के जाए सो वहीं दे के आए, या कि पहला काम घर लौट करके जितने बोले हैं उतने सोने से पहले निकाल दो, घर में दूसरे दिन रखा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जबलपुर में कलश की बोली ले ली 1.5 लाख रुपए की, और उत्ते तोड़ने के कोई नहीं जाते पॉकेट में, वापस आकर सबसे पहले गड्डी बांधी उत्ते पैसे की एक तरफ रखी, फिर उसके बाद दूसरा काम, और वहां से जाकर के पहुंच गए कि ये दोनों संभालो, उनने कहा हम ले लेंगे, आप कौन भगी जा रहे हैं पैसे, जहां में काम हुआ ले लेंगे, कहना नहीं हम नहीं जानते, आप जो करना है वो करो, जैसे संभालो आप संभालो, हम नहीं रखेंगे अपने घर में ये 1 रुपये आप रखो, क्या पता कल के दिन मेरे मन बदल गए और इन रुपयों को मैं अपने पांचों इंद्रिय मन के भोगों में उपयोग करने लगूं, और फिर बाद में मेरे पास देने को नहीं हो और मैं फिर मुश्किल में पड़ गया। इसलिए जो सामग्री हम अपने मन वचन काल से सोच करके एक बार और चढ़ा देते हैं उसके प्रति फिर अपने मन में कलुषता नहीं आनी चाहिए, कुटुंबता नहीं आनी चाहिए, नहीं देने का भाव आ गया, थोड़ा भी मन में आ गया, दिल से देने का भाव आ गया, सब अशुभ नाम कर्म, ईटों का भट्टा इत्यादि लगवाना और ऐसे कर्म करना जिससे बहुत हिंसा होती है आगे जाकर के, और अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। इतना ही नहीं, सबके ठहरने के स्थानों को नष्ट करवा देना, अच्छे लगे हुए उद्यान इत्यादि बाग बगीचे और उनको नष्ट करवा देना, ये सब जो है हमारे अशुभ नाम का, ध्यान नहीं जाता इस तरफ, लेकिन वो मास्टर प्लानिंग हो रही है, बुलडोजर आएगा सबके आश्रय स्थलों को तोड़ ताड़ करके एक तरफ रख देगा, करो भैया अपन समर्थन करो तो अपना भी अहित, बहुत समय के जीने का है मामला, संसार कहां जा रहा है किस तरफ जाने दे, अपन अपना लोटा छाने, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, तो क्या आप संसार बढ़ाना चाह रहे हैं क्या, नहीं हम तो संसार घटाना चाह रहे हैं, तो अपना काम जरा होशियारी से जिम्मेदारी से करना पड़ेगा, जिसके मन में सबके कल्याण के लिए शरीर की क्रियाएं होती हैं, जिसका मन सबके कल्याण से भरा हुआ है, जिसकी वाणी सबके कल्याण के लिए और निरंतर अच्छे वचन बोलती है, वही अपने मन वाणी और शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं, और आगे भी उन्हें ऐसी ही शुभ मन वचन और काय की सामर्थ्य मिलेगी, और अगर अपन इससे विपरीत करेंगे। तो संगम दिया, मेरा शरीर कमजोर क्यों हुआ, मैंने मेरा शरीर कमजोर नहीं बनाया, मैंने अपने कर्म से अपना शरीर कमजोर बनाया है। मुझे अच्छी बुद्धि कहने मिली तो मेरी मां ने मुझे ऐसी छोटी बुद्धि वाला बनाया, वो ऐसा नहीं है। मेरी बुद्धि अगर कम है तो मैंने कभी किसी दूसरे की बुद्धि की प्रशंसा नहीं करी होगी, कभी दूसरे के ज्ञान की प्रशंसा नहीं की होगी, बल्कि उसके बुद्धि को नष्ट करने का उपाय किया होगा, उसके मन को चोट पहुंचाने का विचार किया होगा, जिससे कि मेरे मन को आज क्षुद्रता ही मिली हुई है। ऐसा विचार करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, कोई एक रामानुज नाम का बालक था बचपन में, तो मन वाणी शरीर सबको मिलते हैं, कौन कैसा उपयोग करेगा ये उस पर निर्भर करता है, उसकी चॉइस पर निर्भर। तो उसको बचपन में और एक यज्ञोपवीत संस्कार होता है, दक्षिण भारत में तो ये बहुत होता है, आचार्य महाराज का भी 11-12 साल में हुआ था, मुंजी बंधन कहते हैं उसको। तो उसमें उस संस्कार में मंत्र भी दिया जाता है, जीवन भर गुरु मंत्र इसका जाप करना, जब भी विपत्ति आए तो इससे बचने के लिए है, और चाहे शुभ दिन हो चाहे अशुभ दिन हो सब में जाप करना। तो ये मंत्र दिया उनके गुरु जी ने और समझा दिया कि सुनो, इस मंत्र के जपने और सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है, बड़ा अलौकिक मंत्र है, और सुनो इसको सावधानी से पढ़ना और अपने आप पास ही चुपचाप रखना, किसी को बताना मत, ऐसा बोल दिया। और छोटा सा बालक, उसने रात भर विचार किया कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये मंत्र अलौकिक है, सब कोई जो भी सुन ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, और एक तरफ कह रहे हैं कि किसी से बताना नहीं, ये दोनों बातें तो समझ में नहीं आई। सो सवेरे से जाकर के छत के ऊपर और मंत्र का जोर जोर से पाठ करने लगे। अब गुरु जी को मालूम पड़ा तो बड़े दुखी हुए, आए बेटे हमने तुमसे कहा था कि ये किसी को मत बताना, ये तो चुपचाप करने का है, पर गुरु जी आपने ये भी तो कहा था कि ये मंत्र बहुत अलौकिक है और जो भी इसे सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि सभी सुन ले जिससे सबका कल्याण हो जाए। गुरु जी ने पीठ थपथपाई कि अब तो जरूर तुम्हारे पास ये मंत्र तुम्हारा ही नहीं सबका कल्याण करेगा जो इसको सुनेगा। भैया मंत्र और कोई बड़ी चीज नहीं है, मंत्र तो सबके पास है, उसमें सहमत कौन डालता है, हमारी अपनी सद्भावनाएं सहमत डालती है, मन वाणी और शरीर से जो भी करें वो सद्भावना से होकर के करें, तो फिर देखिएगा कि हमारे जीवन में जो मिलेगा वो सब शुभ ही मिलेगा, और दुर्भावना से अगर मन वाणी और शरीर का हम उपयोग करेंगे तब फिर मानिएगा कि हमें भी आगे शरीर वैसा ही मिलेगा। इसी भावना के साथ कि अपन अपने प्राप्त हुए मन और वाणी और शरीर कैसे अपन में प्राप्त किए होंगे, कैसे अच्छी भावना से ये पाए होंगे, इनका आगे सब उपयोग कर लें, हमें मिले हैं इसलिए, और अगर हमें कमजोर मिले हैं तो हम विचार करें कि हमने कुछ ऐसा अच्छा ना करा होगा, नहीं करें कोई बात नहीं, अब तो शुरू कर सकते हैं, ऐसा विचार करके अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य भूवा विद्य सागर मुनि महाराज की। शाश्वत सुख बेरशत है मग्न स्वरूप तुम्हारा, जग की नाश्वरता कैसे चाहे दर्श कर Thank you.
Shikha. संकट सहा।